सम्राट और आस्था आमने सामने। एंजल ने जल्दी से एक आदमी को अपने पास बुलाया जो उसी का गार्ड था और उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स थमाकर उन्हें कार में रखने को कह दिया। बाकी गार्ड्स को भी कार के पास इंतजार करने के लिए बोल दिया था। आज पूरा दिन आस्था और एंजल ने शॉपिंग की थी और इसी पूरे दिन में उन चारों लड़कों ने आस्था और एंजल को पूरी तरह से अपनी नज़रों के घेरे में रखा था, लेकिन एक बार भी वे उन लोगों की नज़रों में सामने नहीं आए थे क्योंकि वे लड़कियों का पूरा दिन पीछा करके रात को अपना शिकार बनाया करते थे। फिलहाल आज तो आस्था और एंजल ने काफ़ी जमकर शॉपिंग की थी, इसलिए उन्होंने वहीं पास में बने एक छोटे से रेस्टोरेंट में कुछ खाया पिया। आस्था के लिए ये छोटी छोटी यादें काफ़ी मायने रखती थीं। उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थीं। हालांकि उसे अरमान की बार बार याद भी आ रही थी, लेकिन उसे नानी माँ की बातें पूरी तरह से याद थीं कि उसे अब इस तरह से बार बार अरमान को कॉल नहीं करना चाहिए, वरना अरमान उसे लेने के लिए आ जाएगा। इसलिए वो अरमान को ज़्यादा याद ना करते हुए अपनी इस आज़ादी को एंजॉय करना चाहती थी। इस बात से बेखबर कि आस्था की ज़िंदगी में एक नया तूफान आने वाला है, वो आराम से शॉपिंग और खाने पीने के बाद एंजल के साथ अब वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही वे मार्केट से बाहर की ओर जाने लगी, वही चारों लड़के जो आस्था के मार्केट में एंट्री करते ही उस पर नज़र गड़ाए बैठे थे, अब उनके पीछे पीछे जाने लगे। उनमें से एक लड़का तो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे लाल सुर्ख साड़ी में आस्था की झलकती हुई प्यारी प्यारी और खूबसूरत गोरी सी कमर देखकर अब और सब्र नहीं हो रहा था। अचानक उसने आगे बढ़कर मार्केट से बाहर निकलती हुई आस्था की खूबसूरत कमर को पकड़कर नोच दिया। आस्था, जो कि अभी अपनी कार के पास ही जाने वाली थी, जैसे ही उसने ये फील किया, उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने तुरंत घूमकर पीछे की ओर देखा और जोरदार तमाचा उस आदमी के मुंह पर दे मारा। वो आदमी आस्था का तमाचा खाने के बाद भी बड़ी बेशर्मी से उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, हाय ब्यूटिफुल, तुम चाहे जितने मर्जी तमाचे मार लो, लेकिन बस आज की रात। एंजल अब तुरंत गार्ड्स को बुलाने के लिए मैसेजेस करने वाली थी, क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास फ़ोन ढूंढा तो उसने अपने सिर पर हाथ मार लिया, क्योंकि अभी अभी उनकी शॉपिंग खत्म हुई थी तो उसने अपना फ़ोन और बाकी का सामान गार्ड्स को पकड़ा दिया था ताकि वे कार में रख दें, क्योंकि वे लोग सीधा जाकर बस कार में बैठने ही वाले थे, इसलिए उसने फ़ोन रखने की कोई ज़रूरत नहीं समझी थी। अब एंजल के दांत गुस्से में किटकिटाने लगे। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उसने गार्ड्स को वहां से बाहर जाने का इशारा किया था, वरना वे गार्ड्स आसपास ही थे। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो दौड़कर गार्ड्स को बुलाए या आस्था के पास रहकर उसकी मदद करे। अचानक उसने आस्था का हाथ पकड़ा और हड़बड़ाती हुई आवाज़ में बोली, आस्था, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से दौड़ लगानी चाहिए, यहीं पास में ही हमारे गार्ड्स मौजूद हैं, तुम फटाफट यहाँ से चलो, यहाँ रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, हमें इन सब पंगों में नहीं पड़ना चाहिए, हमारे गार्ड्स इन्हें देख लेंगे, फिलहाल तुम चलो मेरे साथ। इतना बोलकर उसने आस्था का हाथ खींचा, लेकिन आस्था वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो उन गुंडों को अच्छा खासा सबक सिखाना चाहती थी। फिलहाल एंजल को इतना घबराया हुआ देखकर आस्था तुरंत उसके साथ दौड़ने लगी। उसने सोचा कि एक बार गार्ड्स आ जाएं, फिर वो सबको अच्छा खासा सबक सिखाएगी। अब एंजल और आस्था वहां से दौड़ने लगी। ये देखकर अब तो वे चारों भी शेर हो गए और ऊंची आवाज़ में बोले, इतनी क्या जल्दी है जाने की, और वे भी तुरंत उनके पीछे दौड़ने लगे। वहीं एंजल हाँफते हुए बोली, आस्था, बस कुछ कदम और, वो देखो सामने हमारी कार है, बस हमें ये रोड क्रॉस करना है, उसके बाद हमारे गार्ड्स हमें देख लेंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। कहीं ना कहीं ये बोलते हुए एंजल काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी और आस्था के साथ लगातार दौड़े जा रही थी, लेकिन आस्था अचानक रोड क्रॉस करने से पहले ही पकड़ी गई, क्योंकि उन बदमाशों में से एक ने आस्था की साड़ी पकड़ ली थी, इसलिए अब आस्था के कदम तुरंत खुद बहुत वहीं रुक गए। वहीं एंजल ने ज़ोर से चीख मार दी, वो तेज़ी से चिल्लाई ताकि आसपास के लोग या गार्ड्स उनकी मदद के लिए आ सके, लेकिन उनकी कार दूसरी साइड रोड पर पार्क थी और वहीं पर सारे गार्ड्स उनका इंतज़ार कर रहे थे। एंजल ने भी उन्हें पहले इंस्ट्रक्शन दिया था कि उनका खाना पीना और शॉपिंग खत्म हो चुका है, अब उन्हें सीधे कार में बैठना है, इसलिए उसने गार्ड्स को थोड़ा पहले भेज दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी मुसीबत उनके बीच आ जाएगी। वहीं अब एंजल को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अब दौड़ लगाते लगाते वे थोड़ा आगे एक सुनसान सी जगह पर आ गई थीं और पास में ही बाजार लगे होने की वजह से वहाँ काफ़ी शोर शराबा हो रहा था। अब एंजल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो कहाँ से मदद मांगे। अपनी कमर पर हाथ रखकर हाँफते हुए वो चारों ओर देखने लगी। उसने परेशान होकर सोचा कि वो अब क्या करे, पर तभी अचानक उसकी नज़र रोड के थोड़े ही पास खड़े एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी ने सफ़ेद रंग का कोट पहन रखा था और शायद उसकी कार का टायर पंचर हो गया था। वो सड़क किनारे खड़े होकर कॉल पर किसी से इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा था। अब एंजल हिम्मत करके जल्दी से उस आदमी की ओर दौड़ पड़ी। वहीं आस्था घूमकर उन मुस्तंडों को देखने लगी और उन्हें चेतावनी देते हुए रूखेपन से बोली, तुम लोग मुझसे दूर रहो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम लोगों की खैर नहीं होगी। लेकिन वे लोग आस्था को बहुत ही गंदी नजर से देखते हुए बेपरवाही से बोले, अगर तुम्हारे साथ आज की रात बिताने के बाद हमें मौत भी आ जाए तो उसकी भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आज तो हम तुम्हारे साथ मजे करके ही रहेंगे। वे आस्था के लिए बड़ी ही गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कान फैल गई और वो धीरे धीरे आस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे। वहीं एंजल तब तक दौड़कर जैसे तैसे सड़क के पास खड़े उस आदमी तक पहुंच गई जो उस वक्त फोन पर बात कर रहा था। अचानक उसने उसके कंधों को पकड़कर कहा, प्लीज मेरी मदद करो, वहां कुछ लोग हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उन्होंने मेरी बहन को भी पकड़ लिया है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। एंजल को यूं गिड़गिड़ाता देखकर उस आदमी ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सम्राट ठाकुर था, सम्राट जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी से जुड़ी डील के लिए आया था। दरअसल वो रास्ते में एक शख्स से मिलने वाला था, लेकिन उसने अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी थी और ऊपर से उसकी कार का टायर पंचर हो गया, जिसकी वजह से सम्राट का पारा पहले से ही चढ़ा हुआ था। अब एंजल की हालत देखकर उसने सोचा, क्यों ना अपनी फ्रस्ट्रेशन इन लोगों पर उतार दूं, इसी बहाने थोड़ा बहुत कोई पुण्य का काम भी हो जाएगा। यही सोचते हुए सम्राट पूरे एटीट्यूड में एंजल के साथ आगे बढ़ने लगा। वहीं आस्था अब उन गुंडों को देखकर चिल्लाई, तुम्हारे पास अभी एक और मौका है, चाहो तो अपनी जान बचाकर यहां से भाग सकते हो। लेकिन तभी उनमें से एक ने अचानक बंदूक निकालकर आस्था पर तान दी। सम्राट अब आस्था के काफी नजदीक आ चुका था, लेकिन उसने अब तक आस्था का चेहरा नहीं देखा था, वो सिर्फ उसकी पीठ पर झूलते लंबे लहराते बाल ही देख रहा था। वहीं आस्था को डराने के लिए वो गुंडा जहरीली हंसी हंसकर बोला, डार्लिंग अब तू हमारे साथ चलेगी। लेकिन आस्था ने अचानक तेजी से अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टक कर लिया और जिस आदमी ने उस पर बंदूक तानी थी उसकी तरफ बढ़कर अपनी ऊंची हील से जोरदार लात मार दी। वो आदमी दूर जा गिरा।
ये देखकर सम्राट, जो गुस्से से उन गुंडों की ओर बढ़ रहा था, एक पल के लिए पूरी तरह सन रह गया। आस्था का ऐसा स्टंट देख वो ठिठक कर पीछे खड़ा रह गया। वहीं एंजल ने समझ लिया कि अब आस्था फाइटिंग मोड में आ चुकी है। उसने जल्दी से सड़क की तरफ दौड़कर गार्ड्स को बुलाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आस्था ने लड़ाई शुरू कर दी है तो वो इन सबको अच्छा खासा सबक सिखाए बिना नहीं मानेगी। आखिरकार एंजल आस्था की फाइटिंग पहले ही देख चुकी थी, इसलिए देर न करते हुए वो गाड़ियों की ओर जल्दबाजी में दौड़ी और वहां खड़े सभी गार्ड्स को जैसे तैसे बुला लिया। एंजल का ऑर्डर मिलते ही सभी गार्ड्स पूरी स्पीड में दौड़कर उनकी तरफ भागने लगे। तब तक आस्था ने उन चारों मुस्टंडों की धुलाई शुरू कर दी थी। वो कभी किसी को पंच चढ़ती, कभी किसी के मुंह पर लात मारती। वो आसपास पड़े बेंच और लकड़ी को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। तभी आस्था ने एक आदमी को खींचकर जोरदार तमाचा मारा, जिससे वो पीछे की ओर जा गिरी। लेकिन ठीक उसी वक्त सम्राट ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया। जैसे ही सम्राट की नज़र आस्था के हसीन चेहरे पर पड़ी, एक पल के लिए वो अपनी पलकें झपकना तक भूल गया था। वहीं आस्था तुरंत खड़ी हो गई और तभी पीछे से एक और आदमी बोतल लेकर उसके सिर पर वार करने आया। लेकिन आस्था को जैसे पहले से इसका एहसास हो गया हो, उसने पलटकर उसकी गर्दन पकड़ ली और लगातार उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। आस्था की इतनी दमदार और धमाकेदार फाइट देखकर सम्राट को ऐसा लगने लगा मानो जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट देख लिया हो। वो एकदम हंसते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आज तक सम्राट ने सिर्फ बेड पर अपने नीचे कमजोर और नाजुक सी लड़कियों को ही देखा था, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार वो किसी लड़की को इस तरह फाइटिंग करते हुए देख रहा था। इस वक्त उसे ये सब कुछ एक अलग तरह का मनमोहक नजारा लग रहा था। सम्राट मजे लेकर आस्था की फाइट एंजॉय कर रहा था मानो वो कोई फाइटिंग मूवी देख रहा हो। फिलहाल आस्था ने उन लोगों को अच्छी खासी धूल चटा दी थी और इससे पहले कि चारों एक साथ उस पर हमला करते, तब तक एंजल सुरक्षा गार्ड्स को लेकर वहां पहुंच चुकी थी। गार्ड्स ने आते ही उन चारों को अच्छी तरह से घेर लिया, लेकिन आस्था का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, खासकर उस पर जिसने उसकी कमर को छुआ था। आस्था ने ध्यान से उसे देखा और तुरंत उसके पास पहुंच गई। पहले तो उसने अपनी ऊंची हील से उसके हाथ पर जोरदार वार किया और फिर देखते ही देखते उसी हाथ पर लगातार वार करके उसे कुचल डाला और अगले ही पल उसने उसके उसी हाथ पर गोली मार दी। अब आस्था को गोली चलाते हुए देखकर एंजल जोर से चीखी, लेकिन सम्राट आस्था को देखकर पूरी तरह से बावला होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट यही मिला हो। वहीं आस्था ने जल्दी से गार्ड्स को देखते हुए अगले ही पल ऑर्डर दिया, इन सबको पुलिस के हवाले कर दो। इसके बाद उसने अपने हाथ झाड़े, बालों को झटका और सीधे एंजल के पास आई। आस्था ने गहरी सांस ली और चेहरे पर गुस्से के भाव छुपाते हुए एंजल से पूछा, भाभी आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? एंजल ने तुरंत आस्था को गले से लगा लिया, फिर आस्था ने उसे संभाला और सम्राट के बिल्कुल बराबर से बिना उस पर कोई नजर डाले वो वहां से निकल गई। लेकिन सम्राट की नजरें तो पूरी तरह आस्था पर ही अटकी थीं। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे आस्था के अलावा उसे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। फिलहाल आस्था जल्दी से कार में बैठ गई। बैठने से पहले उसने एक पल रुककर अचानक सम्राट की ओर देखा और एक हल्की रहस्यमयी नजर डाल दी, फिर तुरंत कार में बैठकर एंजल को लेकर घर की ओर रवाना हो गई। वहीं सम्राट तो एक जगह बर्फ की तरह जम चुका था। उसे ऐसा लगने लगा मानो किसी ने उसके शरीर की सारी जान खींचकर बाहर निकाल ली हो। अचानक उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर ऐसे रिएक्ट किया मानो जैसे उसके शरीर को बिजली ने पकड़ लिया हो। उसके पूरे शरीर में करंट सा दौड़ पड़ा। उसकी कार को दूर जाते देख वो धीमे से बुदबुदाया, क्या था भाई ये, कौन सा करंट था जो मुझे लगा है? सम्राट ठाकुर को लगा है, ब्लैक डेविल को लगा है। कहीं ना कहीं वो बार बार इसी बात को सोचता रहा। उसके शरीर में अजीब सी झुनझुनी महसूस हो रही थी। फिलहाल अचानक वो रहस्यमयी अंदाज में जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनते ही आसपास खड़े गार्ड्स ने तुरंत आकर उसे घेर लिया। तभी सम्राट जल्दी से कार में बैठा और रॉकी की ओर देखकर एकदम से बोला, पता लगाओ वो कार किसकी थी और उसमें बैठी वो लड़की कौन थी। ये सुनकर अगले ही पल रॉकी चौंक गया। आखिर बॉस को हो क्या गया, वो किसी अनजान लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो हमेशा तो उसके हाथ में एक फोटो थमाते थे और कहते हैं कि आज रात उसी के साथ खेलना है, लेकिन आज पहली बार इस तरह से किसी लड़की का पता लगवाने के लिए कहा है। रॉकी कंफ्यूजन में अपने बाल खुजलाने लगा, लेकिन सम्राट के चेहरे की मुस्कुराहट आज जा ही नहीं रही थी। नॉर्मली लोग मुस्कुराते हैं तो सामने वालों को भी खुद ब खुद देखकर थोड़ा सा मुस्कुराना आ जाता है, लेकिन अगर सम्राट, राजवीर या फिर अरमान मुस्कुराते हैं तो उन तीनों को ही देखकर बहुत ही भयानक डर लगा करता है। वही डर इस वक्त रॉकी को भी लग रहा था। फिलहाल जल्दी ही एंजल, जो कि उस वक्त कार में आस्था के गले से लगकर बेचैन होकर रो रही थी, क्योंकि वो पल उसके लिए बहुत ज्यादा डरावना था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आस्था के साथ इस तरह से एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन जिस बहादुरी से आस्था ने उन लोगों का सामना किया था और साथ ही साथ उस आदमी के हाथों पर ही गोली चला दी, तो कहीं ना कहीं ये देखकर एंजल एकदम हैरान हो रही थी। तभी आस्था ने एंजल को कार में रखा हुआ पानी पिलाया और उसे थपथपाकर शांत कराते हुए समझाया, देखिए एंजल भाभी, घर जाकर आप अविनाश भैया या किसी को भी कुछ नहीं बताएंगी और सभी गार्ड्स को भी मना कर दीजिएगा कि कोई कुछ नहीं बताएगा। मैं नहीं चाहती कि उन लोगों को बिल्कुल भी परेशानी हो, आप समझ रही हैं ना मेरी बात? और वैसे भी भाभी, ये बात ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, इस तरह के लुच्चे लफंगे गुंडे हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर बैठे रहते हैं। इस डर की वजह से हम बाहर निकलना तो नहीं छोड़ सकते ना, अगर हमें कुछ आना चाहिए तो इनका मुकाबला करना आना चाहिए और इनसे किस तरह से निपटना है वो आना चाहिए। सो प्लीज आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मुझे कोई अफसोस नहीं है और ना ही मुझे किसी तरह का कोई डर लग रहा है। आपको क्या लगता है क्या चल रहा था नाम के दिमाग में और आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सपोर्ट करें दोस्तों।